ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. தாடிஜி தீன் பார் ஓம் சாந்தி புல்வாத்தியே க்யூ? பலே தோடே போல்தே ஹே, ஃபிர் ஆர் தோடே போல்தே ஹே, ஷாயத் ஃபிர் சபி போல்தே ஹே. तो आज का विषय है बहुत मन भावन विषय है. किसको योग का सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, हाथ ऊपर करें. ठीक है. सेवा का विषय जिसको बहुत अच्छा लगता है, हाथ ऊपर करें. अच्छा, तो हमारे इस विश्वविद्यालय के जो चार विषय है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो कौन सा है? योग. क्यों? क्योंकि योग ऐसा विषय है जिसको हम लौकिक पढ़ाई में मैथमेटिक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, है ना? ऐसा विषय है जिसमें अगर आपकी रुचि है, आपने पुरुषार्थ किया है, तो यू कैन गेट 100 out of 100, पूरा मार्क्स ले सकते हैं. और नहीं तो सरदर्द. जिसको नहीं आता है, नहीं अच्छा लगता है, उसको क्या लगता है? सरदर्द लगता है. तो योग होलसेल पुरुषार्थ है. योग अच्छा लगाना, लगना, वो होलसेल पुरुषार्थ है. जिसका योग बहुत अच्छा लगता है, योग में बहुत रुचि है, क्या है? नहीं बोलती हूँ. जिसकी योग में बहुत रुचि है, योग बहुत अच्छा लगता है, उसकी हर धारणा बहुत सहज हो सकती है. क्योंकि सारी प्राप्तियां जो है संगम युग की, उसका आधार क्या है? योग, ध्यान, मेडिटेशन, जो भी हम कहते हैं. और इसीलिए मैं ऐसा समझती हूं कि वास्तव में संगम युग में पुरुषार्थ केवल एक ही है कि हम यथार्थ रूप से योग लगा करके उसका जो आनंद है, उसका जो अतीन्द्रिय सुख है, उसका अनुभव आत्माएं करे. कलयुग अंत तक आत्माएं थक गई, हार गई, परेशान हो गई. बाबा कहते हैं सुख का नाम निशान नहीं रहा. तभी बाबा ने आकर के हमें जगाया और जीवन को सुख का पर्याय बना दिया. अतीन्द्रिय सुख. आज सारी दुनिया इंद्रियों के सुख के पीछे भागती है, है ना? मन जो चंचलता का अनुभव करता है, मन के लिए कहा गया है कि बहुत चंचल है, पारे के माफिक है, ठहरता नहीं है. इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे जो कारण है वो है इंद्रियों के सुख के पीछे, भौतिक सुख के पीछे मन भागता है बहुत करके. लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि सुख की व्याख्या क्या है. लोग समझते हैं कि शायद बहुत धन होना सुख की निशानी है, अच्छा घर होना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना फिरना, वो सुख की निशानी है. और इसलिए इसी सुख के पीछे अपने जीवन का समय और शक्ति दोनों का उपयोग करते हैं. परिणाम? परिणाम सुख नहीं हुआ, परिणाम क्या हुआ? दुख. धीरे धीरे कलयुग आगे बढ़ता गया और दुख बढ़ता गया। और आपने सुना होगा बाबा की मुरली में कि बाबा कहते हैं अभी तो दुख के पहाड़ गिरेंगे। कारण क्या? आत्माएं तमो प्रधान बन गई है, आत्माएं तमो प्रधान बन गई है, तमस अर्थात अंधकार। इतने जबरदस्त उजाले में बाबा कहते हैं अंतर मन का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है। आप में से कई लोग योग शिविर कराते होंगे, लेसन कराते होंगे, सेंटर में सेवाएं देते होंगे, तो हम लोगों को कहते हैं, है ना, हम लोगों को कहते हैं कि भाई आज दुनिया भौतिक उपलब्धियों के पीछे है, योग जैसी कोई चीज कोई जानता नहीं है, योग लगता नहीं है। उनका कारण क्या बताते? कहते कनेक्शन। दुनिया वालों को बताते हैं ना कनेक्शन, भाई स्वयं का कनेक्शन, उनके साथ जोड़ना है, ना हमें खुद का परिचय है ना उनका परिचय है। तो ऐसे है जैसे कि दो रबर को, रबर वाली वायर को गांठ बांध देना और हम सोचे कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन आ जाएगा, परंतु नहीं आता। क्या करना पड़ता है? रबर को निकालना पड़ता है बेसिक। हम बोल जाते हैं परंतु हमारी मनोस्थिति में ये बैठा हुआ है। सही में जब तक देह भान टूटा नहीं है, जब तक आत्मभाव हमने मन में लाया नहीं है, तब तक योग लगना मुश्किल होता है। बैठे रहते हैं, लाइट जली रहती है, गीत बजते रहते हैं, परंतु अंदर में करंट आता नहीं है, क्योंकि रबर उतारा नहीं है। तो इसीलिए हम जो कहते हैं कि भाई योग का अर्थ ही है स्वयं को आत्मनिश्चय कर। बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं मुझे याद कर। कैसा है? कैसा है? ज्योति बिंदु स्वरूप सबको पता है। एनीवे सबको पता है। हम कहते हैं उनको ज्योति बिंदु है और गुणों का सिंधु है, सर्वशक्तिमान है। एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं, परंतु बात है महसूस करने की, रियलाइज करने की, रियलाइज करने की। इसलिए योग में सबसे पहली बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि हमें आत्मा अनुभूति के नजदीक जाना पड़ेगा। अनुभूति की बात दूर रही, पर उसको समझना होगा कि क्या वो महत्वपूर्ण है। स्वयं को आत्मा समझना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे? बाकी ब्रह्मा कुमारी समझो बने, व्हाइट कपड़े पहने, अच्छे खा पी करके मौज कर सकते हैं, सेंटर में सब कुछ कर सकते हैं, पर क्या आत्माभिमानी बनना महत्वपूर्ण है? क्या कहेंगे? जिसको लगता है बहुत महत्वपूर्ण है हाथ ऊपर करे। आत्मा का महत्व है ना, हम कहते हैं, हम कहते हैं इस शरीर, इस जीवन में महत्व आत्मा का है, बाकी शरीर तो क्या कहते हैं, पांच तत्वों का बना हुआ नाशवंत है। क्या कहते हैं? शरीर तो पांच तत्वों का बना हुआ नाशवंत है, परंतु हमारा पूरा समय कौन ले लेता है? शरीर ले लेता है। इसलिए अपने आप में सोचना है कि क्या मुझे ये समझ में आया है कि महत्व आत्मा का ज्यादा है, शरीर का सेकेंडरी है। शरीर का महत्व तो है, बाबा कहते हैं संगम युग के अंदर शरीर का भी बहुत महत्व है, पर सेकेंडरी, प्राइमरी क्या है, पहले मूल क्या है, महत्व आत्मा का है। आत्मा का क्या महत्व है? आत्मा का क्या महत्व है कि अभी हमें काम करना है आत्मा के ऊपर। अभी शरीर के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है, हमें खाना आता है, पीना आता है, चलना आता है, बैठना उठना आता है, आता है ना, तो उसके पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं। अभी जरूरत किस पर है? आत्मा के पर मेहनत करने की जरूरत है। क्या हमें सही बोलना आता है? हमारी दृष्टि सही है? हमारी वृत्ति सही है? हमारा व्यवहार सही है? हमारा कर्म सही है? क्या हम श्रीमत को सही रूप से पालन कर सकते हैं? क्या बाबा की ज्ञान की बातों को हम समझ सकते हैं? है ना? तो अभी इसके पर काम करना है। आत्मा तमोप्रधान बनी है, शरीर तो वही है, दो हाथ दो पांव। जैसे किसी को समझाते हैं कि देवी देवताएं भी वही है और हम भी वही है, परंतु आत्मा कलयुग अंत में तमोप्रधान बन गई है। हमारा स्वभाव बदल गया है, हमें देना अच्छा नहीं लगता है, हमेशा लेना अच्छा लगता है। चाहे स्थूल वस्तु है, चाहे खुशी है, चाहे प्रेम है, चाहे मान शान है, कुछ भी है, हमें क्या अच्छा लगता है? लेना अच्छा लगता है, देना अच्छा नहीं लगता है। ये स्वभाव बन गया है। छोटी छोटी बातों में हमें गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में मन खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाता है, ये वस्तु के बिगर मुझे नहीं चलेगा, ये व्यक्ति के बिगर मुझे नहीं चलेगा। आत्मा तमो प्रधान बन गई, डिपेंडेंसी तमो प्रधानता की निशानी है, डिपेंडेंसी कमजोरी की निशानी है ना। जब बूढ़े हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, तो क्या होता है, लकड़ी का आधार लेना पड़ता है। तो देह भान की हर वस्तु आत्मा के लिए अभी जैसे आधारित पना है, क्योंकि तमो प्रधान बन चुके हैं। इसलिए हमें अभी जो काम करना है, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना है, वो कौन सा है? तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है, सात्विक बनना है, स्वाभाविक रूप से हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए, शांति प्रिय, पवित्र, सात्विक, हेल्पिंग, जो भी कहो, है ना, जिसको बाबा ने हमें एम दे दिया है बोर्ड पर, कहां पहुंचना है, मंजिल क्या कहा है, सर्वगुण संपन्न और सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। एक एक बात के ऊपर आप चिंतन करके, एक एक बात को धारण करने के लिए चिंतन कर सकते हैं। इसलिए योग का फर्स्ट स्टेप है चिंतन, जिसको बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन। मंथन कहा है ना, मथना, क्या मथना? दही नहीं, विचार। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन, विचार सागर मंथन ज्ञान को महीन बनाता है, महीन बनाता है। जैसे खाने में हम कच्चे गेहूं नहीं खा सकते, क्या करते हैं, पीसते हैं, है ना? एकदम महीन आटा बनाते हैं, उसका फिर आटा गूंद करके रोटी बनाते हैं, तब वो डाइजेस्टेबल पैलेटेबल बनता है और उससे शक्ति आती है, ताकत आती है। उसी प्रकार बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान की गहराई में जाना, चिंतन करना, ये हमारा योग का पहला स्टेप है, जिसको कहते हैं विचार सागर मंथन। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं जिसको करना आता हो वो करे, इसका अर्थ क्या हुआ? बहुतों को नहीं आता है, बहुतों को विचार सागर मंथन करना नहीं आता है, इसलिए योग में मजा नहीं आता है, योग में आनंद नहीं आता है। तो इसलिए आप ये बात अपने मन में नक्की कर लीजिए कि आप जब कभी भी योग में बैठते हैं तो शांत नहीं बैठने का। कईयों को लगता है कि हम जब योग में बैठे एकदम शांत बैठ जाए, शांत तो होते नहीं है। फिर बैठने के बाद लगता है कि शायद जरा आंखें बंद करके बैठे तो ज्यादा शांति लगेगी, बैठ जाते हैं और फिर क्या होता है वो आपको पता है, थक जाते हैं, तो मजा नहीं आता है, आनंद नहीं आता है। तो कभी भी बैठे मत रहिए, जब आप योग में बैठते हैं तो अवश्य विचार सागर मंथन, चिंतन का विषय लेकर के चिंतन करना है। सबसे पहला विषय जो बाबा ने हमें दिया है आत्मा के ऊपर, कि मैं आत्मा हूं, सबसे पहला फर्स्ट लेसन क्या है, मैं आत्मा हूं। क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूं। आत्मा हूं बोलना सहज है, परंतु क्या ये महसूस होता है जब हम मैं कहते हैं, मैं माई सेल्फ आई, जब मैं कहते हैं तो क्या हमें ये महसूस होता है कि मैं बिंदु हूं? सोचिए, ऐसा महसूस होता है कि ब्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ अजब सितारा लगता है कि मैं आत्मा हूं, कि मैं पूरी पर्सनालिटी हूं, वही महसूस होता है ना, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं देखना हूं, जो भी है। तो महसूसता के लिए चिंतन करना कि आत्मा अविनाशी है। क्या है? आत्मा अविनाशी है, वन ऑफ द थिंग्स, एक बात आत्मा के बारे में। अविनाशी का अर्थ यह है कि पहले भी मैं थी, अभी भी मैं हूं और फिर भी मैं होंगी, इस बात पर चिंतन कि मैं अभी निरन्ना बहन हूं, इतना ही नहीं है, उसके पहले भी मैं थी, अभी भी हूं और उसके बाद भी होंगी, इस बात को मन में बिठाना है, चिंतन में लाना है, महसूस करने की कोशिश करना है। इस बात का शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती। आप समझाते होंगे लोगों को, है ना, पानी डुबो नहीं सकती, गीला नहीं कर सकती, पवन सुखा नहीं सकता, आग उसको खत्म नहीं कर सकती। महसूस करो, क्या कैसे महसूस करो, चिंतन, एज इफ की समझो पानी में हम डूब जाते हैं, पानी में डूब गई, क्या होगा प्रोसेस, शरीर डूब जाएगा और आत्मा क्या होगा, आत्मा का, आत्मा डूब जाएगी क्या होगा, चली जाएगी आत्मा। कोई आग में अपने आप को जला देता है, क्या प्रोसेस होता है, शरीर जल के खत्म हो जाता है और आत्मा उड़ जाती है, निकल जाती है, कुछ भी नहीं होता। कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी हवा लगे, चाहे तो एक तरफ तो बाबा आत्मा को कहते हैं कि आत्मा फास्टेस्ट रॉकेट के मिसाइल है ना, सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाए। यहां बैठे हैं आप, सोच आप जिस क्षण सोचते हैं घर तो गई घर, है ना, आप अभी सोचो घर तो क्या होगा, पहुंची। आपका कोई भाई बहन कहां विदेश रहता है, अमेरिका रहता है, लंदन रहता है, आप सोचो और पहुंचे, आत्मा इतनी फास्ट है। और चाहे तो आत्मा कहां ना जावे, है ना। तो ये जब आप योग में बैठते हैं तो आत्मा के बारे में चिंतन करो, आत्मा के बारे में चिंतन करो। जो बाबा बार बार हमें समझाते हैं, सहज भाव से समझाते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं। चिंतन ये करने का है कि मैं इस शरीर से क्या हूं, भिन्न हूं, भिन्न हूं मैं। ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है और मैं कौन हूं, अभौतिक, अलौकिक, अभौतिक, मैं आत्मा। फिर कोशिश करनी है। बाबा कहने में तो कितना आसानी से कह लेते हैं मूली में, ये तुम्हारी दो खिड़कियां हैं। आंखें क्या है, क्या है आंखें, दो खिड़कियां हैं, तो महसूस करो अंदर बैठ के। चिंतन, ब्रुकुटी के बीच में बैठो, अंदर आत्मा तो अंदर है ना, साइंटिफिकली आत्मा के लिए कहते हैं कि आप यहां से दो एक लाइन लगाइए और यहां से एक लाइन लगाइए, दोनों जहां क्रॉस होती है वहां एक पिनियल बॉडी करके ऑर्गन है ब्रेन का, वहां उसके नजदीक रहती है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं वहां बैठी हूं और इन दो खिड़कियों के द्वारा मैं देखती हूं। ये अभ्यास करो, खुद से आंखों को भिन्न महसूस करो कि मैं, क्योंकि आप देखिए आंखें भी क्या है, माध्यम है, मीडिया है ना। तो कुछ भी हम देखते हैं तो आंखें देखती है और देख करके आत्मा को इन्फॉर्मेशन देती है कि ये फूल है, आत्मा कहते ओके, है ना। कानों के द्वारा मैं सुनती हूं तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कान कि ऐसा ऐसा बोला, अभी आत्मा बोला, हाँ बराबर समझ आया, आत्मा क्या कहेगी, हाँ ओके समझ आया। तो आत्मा अंदर में बैठी है राजा, आत्मा अंदर में राजा बन के बैठी है। तो हर कर्मेंद्रिय के द्वारा मैं आत्मा कार्य करती हूँ, ये चिंतन करने का है। ज्ञान तो है परंतु क्या करना है, चिंतन करना है। इसलिए बाबा कई बार मूली में क्या कहते हैं क्या कहते हैं कि तुम्हारे में कछुए जितनी भी अकल नहीं है, क्या कहते हैं, तुम्हारे में कछुए जितनी भी अकल नहीं है। कौन सी अकल, कि भाई काम है तो कर्मेंद्रियों को निकालता है, नहीं है तो समेट के अंदर में बैठ जाता है। तो हमें भी ये चिंतन करना है। ये एक विषय हुआ चिंतन का। अनेक विषय है चिंतन के जो बाबा हमें कहते हैं, बहुत सब्जेक्ट है चिंतन के, आप मुरली से एक एक बात को ले सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण चिंतन है बाबा के बारे में, क्योंकि हमारा लक्ष्य है मैं आत्मा हूं और मुझे बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा के बारे में, शिव बाबा के बारे में चिंतन कर रहे हैं। बाबा क्या है, क्या है? ज्योति बिंदु स्वरूप है। ज्योति बिंदु स्वरूप है ना, कहाँ रहता है? परमधाम में। कुछ दिन पहले बहुत सीनियर बहनों ने पूछा, परमधाम क्या होता है, क्या होता है परमधाम? वहां निवास करते हैं शिव बाबा, और शिव बाबा को हम क्या कहते हैं? वो ज्योति बिंदु है और गुणों का सिंधु है। क्या मतलब है इसका? गुणों का सिंधु है, इसका क्या मतलब है? समझो शांति का सागर है ना, शांति का सागर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या हुआ अर्थ? शांति, शांति का तो सबको अनुभव है ना, अनुभव सबको शांति का। अभी सब शांत बैठे हो, अभी मन में कोई गड़बड़ है, गुस्सा है? नहीं, कुछ नहीं, शांत शांत बैठे। बाहर अभी निकलेंगे, धक्का लगा किसी का, क्या होगा, क्या होगा? हाँ, शांति गई तो कितनी शांति हुई? एक पानी के खबूची जितनी भी नहीं हुई है ना, हल्का सा भी नहीं, जरा सा हुआ गई। कोई ने और शांति का अनुभव ज्यादा किया होगा, कोई ने धक्का दिया तो भी ओम शांति, ओके, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। चप्पल कोई ले गया क्या होगा? अरे परेशान परेशान है ना। मोबाइल खो गया, क्या होगा? हमारा मन शांत रह सकता है? ये तो छोटी छोटी बातें हैं। कोई हमारे साथ झगड़ा करता है, मन शांत रहेगा? एक बार झगड़ा किया, सहन कर लिया, शांत रहे, क्योंकि अभ्यासी है, योगी है भाई, ठीक है। दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, कोई रोज करता है, क्या कहेंगे हम? कब तक, कब तक सहन करेंगे, कब तक शांत रहेंगे, है ना? तो हम शांति के थोड़े थोड़े अभ्यासी बनते जाते हैं, जबकि शिवाबा क्या है? शांति का सागर है, अनलिमिटेड पीसफुल माइंड। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा तो भी बाबा तो एकदम शांति से देखेगा, नया विश्व आएगा ना, है ना? क्या कहता है? नया विश्व आएगा ना, शांति का सागर। तो ये चिंतन करो कि सागर का अर्थ क्या, प्यार का सागर जो अमाप खुटता नहीं है। प्यार सब बच्चों पर बाबा को क्या है? बेहद प्यार है। बेहद, बेहद का अर्थ क्या है? क्या कहा बाबा ने? इसलिए बच्चे तुम जैसे हो वैसे मेरे हो, क्या कहा? तुम जैसे हो वैसे मेरे। मुझे याद है कि एक बार हम लोग शुरू शुरू में ज्ञान में आए हुए थे, और तब तो बाबा को बहुत नजदीक से यहाँ मिलते थे, है ना? तो हम बैठे हुए थे, कुछ बात ऐसी हो गई किसी की, तो दादी जी, बड़े दादी प्रकाशमणि दादी जी, बाबा से कुछ कह रहे थे कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा है। तो हम एकदम इंटरेस्ट से सुन रहे थे कि बाबा क्या जवाब देता है, कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट देगा, कुछ तो करेगा। तो बाबा कहते, बच्ची गिरे हुए को गले लगाओ। अब देखो सहज भाव से, इसको कहते प्यार का सागर, प्यार का सागर। उसको कुछ नहीं बीच में आता है, उनको पता है। जैसे मुरली में कई बार बाबा कहते कि मुझे पता है आत्मा थकी हुई है, परेशान है, थकी हुई है, अब उसको ही मुझे परिवर्तन करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप ये है कि आप जब योग में बैठते हैं तब बाबा की बातों को चिंतन में लाओ। भाई अंदर में माइंड को चलाओ, शांति से बैठे नहीं रहो, समझा? याद रखो, अटेंशन रखो कि मुझे चिंतन करना है, चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है। और आप जितना ज्ञान की बातों का चिंतन करेंगे ना, खुद चिंतन करेंगे, उतना बातें समझ में आएगी। इसलिए रोज मुरली को नई मुरली कहा जाता है, क्योंकि मुरली के सब पॉइंट्स पर तो किसी ने इतना ध्यान दिया ही नहीं है। इसलिए मैं भी कितनी बार मुरली रिपीट हो चुकी होंगी, पर रोज नई लगती है। जैसे कल बाबा ने मुरली में कहा था कि ये बूढ़ा बहुत पुरुषार्थ करता है, कितनी वंडरफुल पॉइंट थी। बाबा ने कहा बुढ़िया तो नहीं समझ सकती है कभी कभी ज्ञान की बातें, पर ये बूढ़ा नंबर वन जाता है। 60 वर्ष की आयु के बाद पुरुषार्थ की शुरुआत, आप सोचिए कितना जबरदस्त पुरुषार्थ किया। आधार चिंतन, आधार क्या है? चिंतन है। तो पहली बात है, पहला स्टेप है योग का, विचार सागर मंथन, चिंतन करना। पहले सीढ़ी चढ़े बिना दूसरी सीढ़ी मुश्किल है। जो हम लोगों को समझाते हैं कि अनेक प्रकार के विचार आएंगे, हो सकता है बाहर वाली दुनिया में लोगों को विकार के विचार आते होंगे, हम तो बाबा के बच्चे बन गए हैं, पवित्र बन गए हैं, पवित्र वातावरण में रहते हैं, हमें विकार के विचार नहीं आते हैं, पर व्यर्थ विचार अवश्य आते हैं। व्यर्थ किसको कहा जाता है? जिस समय जिसकी आवश्यकता नहीं है वो विचार आना व्यर्थ है। आप यहां बैठे हैं और आपको ये विचार आया कि आज भोजन में क्या होगा पता नहीं, तो उसको क्या कहा जाएगा? व्यर्थ कहा जाएगा, है ना? आप यहाँ आप अपने घर के बारे में सोचते रहे, पता नहीं मेरे घर में मम्मी क्या करती होंगी, पापा क्या करता होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? व्यर्थ कहा जाएगा। बैठे यहां है पर अननेसेसरी थॉट्स आते हैं, जिसको दुनिया में हम इसलिए कहते हैं कि हमारे योग की व्याख्या है। दुनिया वालों को ये कहते हैं कि हमारा योग जो है एक्टिव पॉजिटिव थिंकिंग। हमारा योग क्या है? एक्टिव पॉजिटिव थिंकिंग। आपको जागृत रहना है, आपको जागृत रहना है। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग स्पिरिचुअल थिंकिंग को कहा जाता है। आध्यात्मिक सोच को सबसे ज्यादा पॉजिटिव सोच कहा जाता है। एक साइकियाट्रिक डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर, उसने यही कहा कि सबसे पावरफुल थॉट ये है कि आई एम सोल। सबसे पावर, बाहर वाले ने कहा, सबसे पावरफुल थॉट ये है कि मैं आत्मा हूं। फर्स्ट स्टेप। दूसरा, अब दूसरे स्टेप में आप करते ही होंगे, जिसको कहते हैं भाई रूरुहान। क्या कहते हैं? रूरुहान अर्थात क्या? बातें करना। बातें करना तो बहुत अच्छा लगता है ना। दुनिया में लोग कहते बहने तो बातें करने के लिए बहुत माहिर है, आदती है, चू 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 करते ही रहते हैं। तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? बाबा के साथ बातें करना है। बाबा के साथ बात करना कौन जानता है? हाथ ऊपर करे, सभी जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या बात करने का? हाँ, सब बातें करने का, अच्छी बुरी सब, जो अच्छा लगा वो भी और जो अच्छा नहीं लगा वो भी। आप जितनी आदत डालो, कईयों के परिवार में आदत होती है, हमारे परिवार में भी था कि हम कहाँ भी जाएंगे तो कह के जाएंगे, फिर आएंगे तो सारी बात बता देंगे मदर को कि आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। शायद आज किसी को, किसी मदर्स को ऐसा टाइम हो ना हो, पर बाबा को हमारे लिए फुल टाइम है। तो आदत डालो कि हमें सब बातें बाबा से करनी है। जवाब मिलेगा। एक हंसी की बात सुनाती हूँ। एक बार एक भाई ने अपना अनुभव बताया रूरुहान का। साउथ का एक भाई था, कहता है कि और फिर भी करके बहुत ईयर हो गए होंगे ज्ञान में, पर सबको लगता है हम लास्ट में आए हैं, अभी तो ऐसा ही लगेगा ना साकार के बाद। तो कहता है कि मैं बाबा से बहुत झगड़ा करता था, रोता था बैठ बैठ के कि तुमने मुझे इतना देरी से क्यों अपना बनाया, आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं अपना बनाया। बस ऐसा सोच के कहते मैं बाबा के आगे जाके इतना रोता था, इतना रोता था, बात मत पूछो। एक दिन बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अनुभूति की बात है, कहने की बात नहीं पर फीलिंग की बात है। कहते एक दिन बाबा ने कहा देखो बच्चे क्या हुआ कि मैंने जब तुमको भेजा था तो सत्युग में भेजा था, तुम बहुत सुंदर था, अब मैं आया तो तेरे को ढूंढने लगा, पर अब तू एकदम काला हो गया है ना। तो कहते मैं तेरे को ढूंढ नहीं पाया, तो कहते मेरे को इतनी हंसी आ गई, कहते ठीक है मे बी आंसर को ऐसा लॉजिकल नहीं है, पर उनको इतना खुशी हो गई कि बाबा ने मुझे एकदम आंसर प्रॉपर दे दिया। अब देखो तो बाबा से बात करते आपको ऐसी ऐसी फीलिंग आएगी, अनुभूति होंगी कि आपको आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। मुझे याद है कि एक बार हमने बाबा को बोला, जैसे यूजुअली बोलते हैं सब कुछ, तो प्रोग्राम था, तो मैंने बाबा को कहा बाबा आपको है ना पूरा टाइम हाजिर रहना है। हाँ तो बाबा कहते ठीक है रहूंगा ना, उसमें क्या है। फिर क्या कहता है, तुम जब जब मेरे सामने देखेगी तब तब मैं वहां हाजिर होगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जब अगर हमारा ध्यान नहीं है तो वो नहीं है, हमारा ध्यान है तो वो हमेशा हाजिर है। तो बाबा से अगर आप बात करेंगे तो बाबा इन एडवांस बहुत बातें आपको बता सकता है, बहुत बातें सकता है, और हमारे निश्चय में बढ़ावा होता है। जैसे हम कहते ये वही जिसका शास्त्रों में गायन है, जिनके लिए तपस्वियों ने बहुत तपस्या की है, वही परमात्मा शिवाबा आया हुआ है, वही आया हुआ है। एक और अनुभव सुनाती हूँ अपना, कि पहले शुरू में जब हम ज्ञान में आई 68 की बात है, जब मैं आई तो मुझे लगा कि मैं ही सबसे लास्ट हूं ज्ञान में आने वाली, मैं सबसे लास्ट, क्योंकि बाबा ने फिर उस समय ही ये पॉइंट कहा था लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट। तो मैंने समझा शायद मेरे लिए ही बाबा ने ये कहा है क्योंकि मैं ही सबसे लास्ट आई हूं। तो जब शुरू में हम योग लगाते थे घर में बैठे योग लगाते थे, तो मैं बाबा के पास जाती थी और बाबा को कहती थी कि बाबा आपके पास तो मैं रोज आती हूं, तो आप तो मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं क्योंकि मैं रोज आती हूँ, रोज बात करती हूँ, आप तो मुझे पहचानते हैं, पर यहां मधुबन में मुझे कौन पहचानेगा, हम तो नए नए थे, छोटे थे, एकदम नए नए थे, यहाँ तो मुझे कोई दादियां पहचानती नहीं है, कोई नहीं पहचानेगा ना। तो बाबा फिर हम जाएं तो आप हमारा इंट्रोडक्शन देना भाई, क्योंकि मेरे को वो लोग तो पहचानते नहीं है। ऐसा अंदर अंदर योग में बाबा से बातें करती रहती थी। फिर हम जब यहां एक बार आए तो शुरू में बाबा जो आते थे वो ऊपर पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में आते थे, और बाबा को भोग लगाने के समय सब क्लास वालों को बाहर भेज देते थे, खाली दादियां ही बाबा को भोग ऑफर करती थी। अभी के जैसा नहीं था कि इन जनरल भोग ऑफर करते थे, नहीं, पर्सनल दादियां करती थी। हम तो बहुत छोटे थे, 18 साल के थे, तो मन एकदम जबरदस्त बाबा से लगा हुआ, एकदम अंदर में कंप्लेन, और जाते नहीं थे तो वो डोर होते हैं ना, दरवाजे सब कुछ बंद कर देते थे, दरवाजे और खिड़कियां सब बंद, पैक बंद, उसके बाद अंदर में बाबा को भोग स्वीकार कराए, तो हम वो दरवाजे की तिरार से देखते रहते थे क्या करता है। तो फिर एकदम गुस्सा आया मन में बाबा के ऊपर गुस्सा आया। मैंने कहा ऐसा कैसा भगवान है तू, ये कोई भगवान होता है क्या जो अकेला बैठ के खाता है और तुम्हारे बच्चे बाहर तुमको तुम्हारी राह देख रहे हैं और तुम बैठे बैठे खाया जा रहा है, ऐसा कैसा भगवान। ऐसा ऐसा अंदर में सोच रही थी, बाहर हम खड़े थे। इतने में एक दादी को बाबा ने भेजा, दरवाजा खोला, आपको बाबा अंदर बुला रहा है। हम तो एकदम शौक से खुशी से गए कि कैसा बाबा बुला रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो गए, बाबा ने नजदीक बुलाया। बाबा दादी को कहता है कि दादी ये मेरी बहुत अच्छी योगिन बच्ची है, रोज मुझे मिलने आती है। अब सोचिए, तो मेरे को तो इतना आश्चर्य लगा कि ये कैसी बात है, ये कैसी बात है, कितनी निश्चय की बात है कि वही जिनके साथ मैं योग लगाती हूँ वही साक्षात मेरे सामने आया हुआ है। दादी ने भी बहुत प्यार किया कि ये तो पहली बार हुआ। हम तो यूजुअली बाबा को सबका इंट्रोडक्शन देते हैं, बाबा ये यहाँ से आई है, आज बाबा ने तेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, वही बात जो मैंने कहा था बाबा को। तो ये है रूरुहान। आप सोचिए ये है क्या रूरुहान। जितना आप बाबा से बातें करते जाएंगे उतना ज्ञान आपको समझ में आता जाएगा, जितना ज्ञान समझ में आता जाएगा उतना आपका जीवन सरल होता जाएगा। सरल बातें समझ में आएगी, पहले कोई ऊपर नीचे बोलता है तो मन खराब हो जाता था, अब बाबा को कहे बाबा नहीं अब मन खराब नहीं होता, चलता है, सहन हो जाता है, मन खराब नहीं होता है, अब किसी की ईर्ष्या नहीं आती है, पता चल गया हर एक का अपना अपना पार्ट है, समझ आ गया। जितना जितना बाबा से रूरवान करते हैं, जो चिंतन की बात कही वो करते हैं, उतना क्या होता है धीरे धीरे बातें समझ में आती है। बात कुछ नहीं मिला कोई बात नहीं, कुछ मिला अहंकार नहीं, समझ आ गया बस। अब किसके लिए मन खराब करने का, अब किसके लिए मन खराब करना, समझ आ गया। फिर हम बाबा के पास जाएंगे रूरवान करने तो ही बाबा के बच्चे ठीक है, ठीक है बाबा, कोई कंप्लेन तो नहीं, बाबा कोई कंप्लेन नहीं, ड्रामा समझ आ गया है ना, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है। और जब बाप मिले हैं आप मिले हैं तो मुझे किस बात की चिंता, किस बात की सोच। तो धीरे 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 रूह रूहान की स्थिति के बाद कुछ बात करने को नहीं बचता है, कुछ कंप्लेन करने को नहीं बचता है, कुछ मांगने को नहीं बचता है, चुपचाप बाबा के सानिध्य का अनुभव करते हैं, बाबा के पास जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बाबा हमारे सामने देखते रहते हैं, हम बाबा के सामने देखते रहते हैं, कुछ बोलने को दिल नहीं करता, उसको कहते हैं अव्यक्त स्थिति। कुछ बोलने को दिल नहीं करता, मन अनुभूति में डूबा हुआ रहते हैं। बाबा कहते हैं ना कई बार कि तुम क्या करते हो, सागर में डूबे हुए हो या खाली ऊपर ऊपर तैरते हो, क्या करते हो। तो आपको ऐसा गहन शांति का, प्यार का, आनंद का अनुभव होगा जिसको कहते हैं अव्यक्त स्थिति। योग में अगर इस स्थिति का अनुभव हुआ तो जीवन में भी सारी कंप्लेन खत्म हो जाएगी, जीवन की सारी कंप्लेन, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। कईयों को लगता है कि हम इतना करते हैं पर हमें इतनी प्राप्ति नहीं है, और कईयों को लगता है हम कुछ नहीं करते तो इतनी प्राप्ति क्यों है, है ना, जिसको कहते हैं कि भाई हमने जितना चाहा था उससे हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है। हमने तो ना वो तपस्या की जंगल में जाके एक पांव पर खड़े रहे, ना उपवास किए, उपवास किए जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो हाथ ऊपर करे, अच्छी बात है। बाकी तो सब क्या है, भक्ति भक्ति कोई की नहीं है, है ना, ऐसा समय ही नहीं आया भक्ति करने का, तो किया कुछ नहीं है और प्राप्ति इतनी ज्यादा है तो जीवन भरा भरा लगेगा। जीवन में खुशी खुशी रहेगी, आनंद आनंद रहेगा, बाबा कहते हैं ना कि फिर लोग पूछेंगे तुमको इतनी खुशी किस बात की है, खुशी किस बात की, खुशी अंदर से होती है, व्यक्ति छिपा नहीं सकता है ना। जीवन में आनंद है तो व्यक्ति छिपा नहीं सकता है, कितना भी कहो। एक बार की बात है कि फिर बाद में बाबा से मिलन मनाने का तरीका बदलता गया बदलता गया बदलता गया, पांडव भवन से नीचे आ गए, शांतिवन में आ गए। मुझे याद है कि जब पहली बार बाबा को ऊपर ओम शांति भवन में आने का था तो मन में सेट ही नहीं होता था। शुरू में तो बाबा अपने पर्सनल, जो बाबा का रूम है ना उसमें आते थे तो पर्सनल मिलते थे एक एक, फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में, फिर बाबा मेडिटेशन हॉल में, और फिर ओम शांति भवन बना। तो ओम शांति भवन तो ऐसा ही है जिसमें स्टेज है और बाबा स्टेज पर बैठेगा और हम सामने बैठेंगे इतने दूर। तो हमने दादी को, दादी हम लोग तो वहां स्टेज पर ही बैठेंगे ना बाबा के सामने। अरे मुट्ठी, स्टेज पे थोड़ी बैठेंगी, वहीं बैठेंगी, मैं भी वहीं बैठूंगी, इतना दूर कैसे बैठेंगे, ऐसा लगता था है ना। तो समय बदलता गया, फिर शांतिवन में आए तब तो इतना बड़ा हॉल है, बाबा है। तो भी एक समय ऐसा था जो बाबा सबको दृष्टि देते थे। शुरू में तो बहुत किया, एक एक को मिले, परिवार को मिले, ग्रुप को मिले, बदलता गया समय, बदलता गया समय ऐसा आ गया कि बाबा फिर कुछ लोगों को दृष्टि के लिए स्टेज पर बुलाया जाता था, कुछ लोगों को। समझो हम, हमारा सेंटर है, इतने सेंटर है, इतनी बहनें हैं, हमें 5 रिबन मिलेगी, हम किसको देंगे? टर्न बाय टर्न देंगे, नहीं तो किसी एक को देंगे, दूसरे को खराब लगेगा है ना। तो मैंने एक माता को बुलाया और चुपचाप उसको एक नंबर की दरवाजे पर बुला के ये रिबन तुमको देती हूँ, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। कहते नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। पर अंदर में जो खुशी, तो जो खुशी हुई ना, जैसे वो बेचारी अपने जगह पर बैठने गई तो बोला क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है, कुछ तो तेरे को हुआ ही है, तू इतनी खुश क्यों नजर आती है? तो फिर बेचारी को मजबूरी कहना पड़ा, क्या है, मेरे को रिबन मिला है ना बाबा से दृष्टि लेने का। आप देखो, खुशी छिप नहीं सकती, जीवन की खुशी भी छिप नहीं सकती, समझा? इसलिए जीवन को आनंदमय बनाओ, खुशी वाला बनाओ, आनंदमय बनाओ। जो औरों को आपकी ईर्ष्या हो कि इसको क्या मिला, ऐसी स्थिति को कहते हैं अव्यक्त स्थिति। साथ साथ कहते हैं अव्यक्त स्थिति में ही कहते हैं फरिश्ता स्थिति। पुरुषार्थ यही है। देखो, शूद्र से ब्राह्मण बाबा बनाता है, कोई अपने आप नहीं बनता, बाबा बनाता है। बाबा हाथ, आप सबका अनुभव होगा कि शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आते हैं तो क्या स्थिति होती है ना, उड़ते हैं, योग लगाना नहीं पड़ता है, योग लगा रहता है, बाबा को याद नहीं करना पड़ता है, बाबा भूलता ही नहीं है, है ना। मुश्किल है, मुझे भी याद है कि हम जब शुरू में ज्ञान में आए, मेडिकल में अभ्यास, सेकंड MBBS में मैं थी उस समय, तो मुश्किल था बाबा को भूलने का, पढ़ना बहुत मुश्किल, कैसे पढ़ूं, बाबा ही याद आता रहे, बाबा ही एकदम स्ट्रांग थॉट करके अब बाबा को बिल्कुल याद नहीं करने का, तुम बुक किताब पढ़ो, तो मुश्किल पढ़ सकते थे शुरू में। फिर बाबा जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कहते अभी अपने आप चलो, है ना। अच्छा, अब जब फरिश्ता बन जाएंगे तो फरिश्ता से देवता भी अपने आप बन जाते हैं। फरिश्ता बनने के बाद कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ कौन सा है? ब्राह्मण से फरिश्ता बनना। पवित्र तो बन गए, पर बाबा कहते हैं फरिश्ता, अव्यक्त को फरिश्ता कहा जाता है। जब आपके जीवन में कोई कंप्लेन रहती नहीं है तो फरिश्ता बनते हैं। उसकी विधि क्या है? समय कम रह गया है, शॉर्ट में इसकी विधि ये है, फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला, कहने में एक्चुअल नहीं होता है, उड़ने का नहीं पर मन उड़ने की बात है। तो ये ऐसे ही है जैसे एरोप्लेन है, आप सबने एरोप्लेन देखा होगा। क्या करना पड़ता है एरोप्लेन को? पहले चलना पड़ता है, फिर फास्ट चलता है, उसकी गति एकदम फास्ट हो जाती है, बाद में उड़ता है। तो उसी प्रकार ब्राह्मण जीवन में अगर आप चलते रहेंगे, तो जब हम चलते हैं तो आजू बाजू की अनेक चीजें हमें दिखती है। कभी कभी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात आ गई तो आप खड़े भी रह जाएंगे, है ना। तो चलने की गति नहीं चाहिए अभी, उससे फास्ट। जब आप जल्दी चलते हैं तो क्या होता है, कुछ नजर ज्यादा आता नहीं है। कोई कुछ बुलाएगा भी तो भी आप देखो जल्दी है जरा प्लीज, आप रुकेंगे नहीं, मेरे जल्दी है, ट्रेन का टाइम हो गया, फास्ट जा रहे हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी हम जाएंगे। तो क्या है कि हम आजू बाजू का सीन सीनरी देखते नहीं है, अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं। जब एकदम फास्ट गति हो जाती है तो कुछ दिखता ही नहीं है। आप फास्ट ट्रेन में बैठे होंगे, प्लेन भी बहुत फास्ट हो जाता है तो कुछ दिखता नहीं है। तो फिर क्या है, हम इस दुनिया में हैं, कामकाज करते हैं, आते जाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु कोई क्या करता है, कोई नहीं क्या नहीं करता है, अच्छा है नहीं अच्छा है, हमें कुछ भी दिखता नहीं है। मुझे याद है कि हम जब हमारा सेंटर था बड़ौदा में, फोर्थ फ्लोर पर था, फोर्थ मंजिल पर था, बहुत ज्यादा सीढ़ियां थी, है ना, तो लोग तो थक जाते थे। मुझे याद है ऊपर पांचवी मंजिल भी थी, मुझे याद है कि हम उस समय जॉब भी करते थे, जॉब से आते थे, पर ऐसी अपनी मस्ती में और बाबा की याद में तो चार तो क्या पांचवी मंजिल चढ़ जाती थी। देखिए अरे तो बिल्कुल ऊपर आ गए, अभी और नीचे जाना पड़ेगा, समझा। थकावट का तो नाम निशान नहीं, कि कभी कोई थकावट भी होती है क्या। तो नशा, ये क्या होता है, नशा होता है। तो चलते चलते सब कुछ होता है लाइफ में, आपके आजू बाजू भी बनता है, आपके परिवार में भी बनता है, आपके सेंटर में भी बनता है, सब कुछ बनता है। पर बाबा ने क्या कहा है, टू गो बियॉन्ड, अर्थात अपने आप को ज्ञान से ऐसा परिपक्व बनाना है कि आप उससे उपराम जा सको। कोई बात नहीं, ओके। कुछ साल पहले बाबा ने ये बहुत अच्छा सेंटेंस सबको दिया था, ओके, हर बात में क्या करो, ओके, ये हो गया ओके, कि कोई हमारे साथ बोला ओके, नहीं बोला ओके, है ना, फलाना मेरे साथ क्यों नहीं बात किया, हमने बात किया, उसने नहीं किया, हमने उसको इतनी मदद किया आज तक, मेरा जब समय आया तो मुझे किसी ने मदद नहीं किया, नहीं ओके, हर बात में क्या ओके। बाबा ने कहा था उस समय, आई एम ओके, यू आर ओके, ऑल आर ओके, ओके। ओके का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, बाबा के साथ का नशा, ये आप सबको बियॉन्ड जाने में मदद करेगा। कुछ भी बनता रहे, पुरुषार्थ करना है, सेवा करना है, संबंध संपर्क में आना है, सब कुछ करना है, पर मन को कभी बिगाड़ना नहीं है, मन को कभी बिगाड़ना नहीं है, तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव होगा। फरिश्ता अर्थात लाइट, बाबा कहते डबल लाइट, है ना, डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात एक है लाइट ज्ञान की, सतत मन में ज्ञान चलता रहे, और दूसरा लाइट अर्थात हल्का, ओके ओके। मन को कभी भारी नहीं करो, रो मत, कौन नहीं रोता है हाथ ऊपर कर, कोई कोई है, अच्छी बात है। अब किसके पर रोना, अब किसके पर रोने जैसा कुछ रहा ही नहीं है। बाबा मिला क्या, सब कुछ मिला, बाबा मिला, सब कुछ मिला। इसलिए रोते वही है जो किसी भी परिस्थिति के वश हो जाते हैं। हमें उसके बियॉन्ड जाना है, उपराम जाना है, तो कभी भी मन नाराज नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति का अनुभव करना है और हमारा जो लक्ष्य है उसको हाईएस्ट स्थिति कहते हैं और उसको कहते हैं बिंदु स्वरूप स्थिति। आत्म स्थिति का, आत्म भाव का अनुभव करना, जिसको कभी कभी बाबा कहते हैं, रोज की बात है, देही अभिमानी भव अथवा आत्म अभिमानी भव। बाबा कहते हैं शरीर को भूलो, ये शरीर को भूलो, शरीर को भूलो, बार बार कहते हैं। परंतु जैसे कहा ना, फरिश्ता स्थिति से बिंदु रूप स्थिति आ सकती है, ऐसे ही बैठे बैठे नहीं आ सकती, अभ्यास। बाबा का साकार बाबा का अभ्यास आपको पता है, बाबा कहते सारा दिन रात मैं ये सोचता रहता था, लिखता रहता था, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, सभी आत्माएं हैं। सभी आत्माएं हैं कि नहीं है? जो दिखता है वो एक्चुअल नहीं है, जो नहीं दिखता है वो एक्चुअल है ना? आत्मा सत्य है क्योंकि आत्मा अविनाशी है, शरीर नाशवंत है, आत्मा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। आत्मा इतनी चैतन्य है और शरीर के साथ जुटी हुई है, तो जैसे बाबा ने कहा था आत्मा को सबसे ज्यादा प्रिय अपना शरीर है, इसलिए छोड़ना ही नहीं चाहती है, मुश्किल है। तो आत्मा, जैसे पहले कहा कि आत्मा के बारे में सोचना, सोचने के ऊपर ही स्थिति निर्भर है। जैसा आप सोचते हैं वैसी आपकी स्थिति बनती है। हमने बचपन से शरीर के बारे में सोचा है, बचपन से हमें शरीर के बारे में कॉन्शियस किया गया है, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, है ना, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। ध्यान किस पर? शरीर पर। हमने, हमें लोगों ने शरीर के थ्रू ही पहचाना है, इसे लोगों की दृष्टि भी जो है वो हमें देह भान में लाती है ना, क्योंकि लोग दृष्टि शरीर को देख करके पहचानते हैं, बुलाते हैं, बुलाते हैं, पहचानते हैं, जो भी करते हैं, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ शरीर के संबंध में है। भूख लगती है, प्यास लगती है, टेस्ट आता है, अच्छा सुनने को दिल करता है, ये सब क्या है? दैहिक है। उसके बारे में इतने विचार, और आत्मा के बारे में कितना विचार करते हैं? क्योंकि ये कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है। अगर दिन में हम 10,000 विचार करते हैं समझो, तो 10 में से 9900 जो विचार होंगे वो शरीर के बारे में होंगे। मुश्किल जब योग में बैठते हैं तो आत्मा के बारे में सोचते हैं, तो स्थिति क्या बनेगी? आत्मा अभिमानी बनेगी कि देह अभिमानी बनेगी? क्या बनेगी? देह अभिमानी बनेगी। तो अब हमें पुरुषार्थ ये करना है, इसलिए बाबा कहते हैं कि काम करते करते भी स्वयं को आत्मा समझते जाओ, चलते चलते भी सोचो कि मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा उठ रही हूँ, मैं आत्मा बैठ रही हूँ, मैं आत्मा खा रही हूँ। जितना ज्यादा विचार करेंगे चलते फिरते, उठते बैठते चलते फिरते, तो फिर एक बार आप करके सोचिए, करके देखिए, आज समझो आज अभी आप उठेंगे तो कौन उठेगा, कौन उठेगा? आत्मा। आत्मा उठेगी तो कहाँ इनिशिएटिव होगा? यहाँ। कि आप ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे? नहीं, आत्मा। आत्मा उठेगी फिर हाँ शरीर को बोलेगी चलो उठो, तो फिर आपका कहना मानेगी, है ना, पाँव की चलो उठते हैं, आप कहते हैं तो उठते हैं। तो बार 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 आप जिसको देखते हो देखो कि ये चलता तो है पर ये आत्मा चलती है, आत्मा बैठती है, आत्मा बोलती है। आज करके देखिए फिर देखो योग कैसा लगता है। आप योग में बैठेंगे और एकदम बाबा के पास पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छा योग लगेगा। तो बिंदु रूप स्थिति पुरुषार्थ नहीं है, परिणाम है आपका लाइफ टाइम का, लाइफ का पूरे दिन का जो आपकी दिनचर्या है, आपका जो पुरुषार्थ है उसका परिणाम आत्मस्थिति है। आनंद आ जाएगा आपको, अवर्णनीय आनंद जिसको कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख जिसको कहते हैं, वो महसूस होता है। और जब होता है तो लगता है कि विदाउट एफर्ट हुआ, जब हो जाता है तो ऐसा लगता है ना। तो इसलिए अभी हम योग में बैठेंगे, सभी थोड़ा फ्रेश तो है ही, फ्रेश है ना सभी, कि नींद आती है, नींद तो नहीं है ना किसी को, तो फ्रेश होके बैक स्ट्रेट करके थोड़ा बैठ जाएंगे। उठने को तो नहीं कहा था मैंने, यही मन की चंचलता है, मन को जरा जरा ढीला छोड़ा भागेगा। तो अभी हम सभी बाबा की उस याद में बैठेंगे। पहली बात, स्वयं को भ्रुकुटी के बीच में महसूस कीजिए, अपना ध्यान अलर्ट हो जाइए और अपना ध्यान शरीर के विभिन्न भागों से समेटते हुए भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित कीजिए। महसूस कीजिए, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप चैतन्य सितारा हूं। मैं आत्मा अविनाशी हूं। पांच तत्वों के बने हुए ये शरीर की मैं मालिक हूं। ये शरीर माध्यम है, इस दुनिया को। अनुभव करने के लिए इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए ये शरीर रूपी साधन मुझ आत्मा को मिला है। मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। चैतन्य हूँ। आँखों के द्वारा देखने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। कानों के द्वारा सुनने वाली मैं आत्मा हूँ। सर्व कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा। मैं बहुत तकदीरवान आत्मा हूँ। इस जन्म में मुझे स्वयं भगवान मिले हैं। अब मैं मन और बुद्धि के साथ इस शरीर से उपराम होकर पांच तत्वों से पार अपने बिंदु स्वरूप में मैं चैतन्य बिंदु अब रूहानी यात्रा पर हूँ। बादलों को पार करते हुए सूर्य चांद और सितारों को पार करते हुए मैं अपने वतन की ओर जा रहा हूँ। और ये मेरा घर। मूल वतन, शांति धाम, परम धाम, स्वयं प्रकाशित, और इस परम धाम में मैं अपने मन के सामने अद्भुत चैतन्य सितारे को देख रही हूँ। प्यार की किरणें मुझ आत्मा के अंदर महसूस हो रही है। अद्भुत, अलौकिक, गहन प्यार का अनुभव हो रहा है। बाबा बहुत प्यार से मुझ आत्मा की ओर देख रहे हैं। मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। भाग्यवान महसूस कर रही हूँ। कैसा अद्भुत समय है। सोच रही हूँ, बाबा आपने मुझ आत्मा में क्या देखा। बाबा आपने मुझ आत्मा में क्या देखा जो मुझे अपना बना लिया। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। कह रहे हैं, तुम कल्प पहले वाली मेरी गोपी हो। तुमने ही मेरे विश्व परिवर्तन के कार्य में मुझे मदद किया था। तुम वही हो जिनका भक्त गायन करते हैं। मुझे महसूस हो रहा है मेरे जीवन के हर श्रेष्ठ कर्म का फल आज मुझे मिल रहा है। विश्व नियंता सर्वशक्तिमान आज मुझे अपना कह करके असीम प्यार कर रहा है। मेरे दिल से यही निकल रहा है बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान महसूस कर रही हूँ बाबा। अंदर में ये संकल्प आ रहा है कि मेरा सब कुछ बाबा, मेरा सब कुछ आपका है। पूर्ण रूप से आपका मेरे पर अधिकार है बाबा। मैं अपनी जो भी विशेषता है, जो भी कार्य क्षमता है, आपको अर्पण करती हूँ। मैं मन और बुद्धि से आपके आगे समर्पण हूँ। बाबा आप जो कहेंगे, जो कराएंगे, मैं आत्मा अवश्य करूंगी। बाबा आपने मुझे अपना बनाया है। अब मेरे जीवन में आप ही सर्वस्व है। महसूस हो रहा है बाबा, आप ही मेरे सर्व संबंधी हो। अब ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने जीवन से अपने कर्म और व्यवहार से सदैव आपका परिचय देती रहूंगी। अब मुझ आत्मा को ये महसूस हो रहा है ये मेरा अंतिम जन्म है। नाटक पूरा हो रहा है। और अब वापस घर जाने की तैयारी करनी है। इस संकल्प को लिए हुए बाबा के प्यार को अपनेपन की महसूसता को साथ में लिए हुए भरपूर होकर के मैं आत्मा फिर से कर्म क्षेत्र की ओर आ रही हूँ। फिर से अपने निजी स्थान भ्रुकुटी के बीच में अपने आप को महसूस करती हूँ। अब मैं इसी अनुभव को चारों ओर फैलाते हुए जीवन को सफल करने का संकल्प करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।